आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक प्रार्थना सिखाते हैं। हे पिता हमारे, प्रार्थना, इसे हम घंटस्थ करते हैं और मन से बोलते हैं, लेकिन इस प्रार्थना को पूरी तरह समझना बहुत ही कठिन है। जितनी रहस्यमय यीशु की शिक्षा है, उतनी ही रहस्यमय ये प्रार्थना भी है। इस प्रार्थना में ईश्वर को पिता मानने का निमंत्रण है, इसके साथ साथ कलीसिया को माता मानने का निमंत्रण है, और इसी के साथ साथ पूरी मानव जाति को अपना परिवार मानने का निमंत्रण है। ईश्वर को पिता मानने का निमंत्रण हम पाते हैं जब प्रभु यीशु हमको ईश्वर को पिता कहकर पुकारने को सिखाते हैं। जब प्रभु ये सिखाते हैं कि हमें हे पिता हमारे, हे हमारे पिता कहकर पुकारना है, तो प्रभु का यह मतलब है जो भी कोई ईश्वर को पिता कहते हैं उनको एक साथ प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करने वाले लोगों का समुदाय है कलीसिया। ईश्वर को पिता कहकर, अब्बा कहकर, पुकार कर ईश्वर से रिश्ता जोड़ने वाले लोगों का समुदाय है कलीसिया। इसीलिए मैंने कहा कि इस प्रार्थना के द्वारा यीशु हमको कलीसिया को माता मानने के लिए निमंत्रण देते हैं, और इसके साथ साथ हमारी सारी मानव जाति को अपना परिवार मानने के लिए भी प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं। क्योंकि इसमें जो प्रार्थना है एक खुली प्रार्थना है, सबके लिए सबकी भलाई चाहकर, सबके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि बने रहें, इसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सिखाते हुए प्रभु यीशु सबसे पहले प्रार्थना की शक्ति पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से लाल समुद्र दो भागों में विभाजित हो सकता है। प्रार्थना से यरीको की दीवार गिर सकती है। प्रार्थना से सुसन्ना को मुक्ति मिल सकती है। प्रार्थना से युद्धों में विजय मिल सकता है। प्रार्थना से नामान नामक कोड़ी का कोड़ दूर हो सकता है। प्रार्थना से हमें रोज की रोटी भी मिल सकती है। प्रार्थना से सुलेमान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रार्थना से दाऊद को क्षमा प्राप्त हुई थी। प्रार्थना से बालक दाऊद को गोलियत पर विजय पाने की शक्ति मिली थी। प्रार्थना से अवधूतों को निकाला जा सकता है। प्रार्थना से मुर्दों को जिलाया जा सकता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि प्रार्थना में ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है। पिता हमारे प्रार्थना हमें सिखाकर प्रभु यीशु हमको यह भी बताते हैं कि जब हम इस दुनिया की बातों में, दुनिया की चिंताओं में फंसे रहते हैं, हमें हमेशा ईश्वर की ओर अभिमुख होना चाहिए, ईश्वर की ओर अभिमुख होना चाहिए। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, हम ज़्यादातर दूसरे लोगों की ओर, दूसरी परिस्थितियों की ओर अभिमुख होते रहते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर हो। हमें मालूम है कि इस्राएली लोग जब कभी प्रार्थना करते थे, यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करते थे। कई कलीसियाई समुदायों में ये प्रथा है कि वे पूर्व की ओर देखकर प्रार्थना करें। पूर्व से सूरज उगता है, हमारा सूरज, हमारा प्रकाश का स्रोत प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करते हुए पूर्व की ओर देखकर प्रार्थना करने की कलीसिया में, कई समुदायों में प्रथा रही है। ईश्वर की ओर अभिमुख होना। प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते हुए अपने शिष्यों को सिखाई थी। प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस की ओर जाते जाते अपने पिता की ओर अभिमुख रहते थे, हमेशा पिता की ओर अभिमुख। उनके मुँह से निकलने वाले शब्दों को पाकर, उनकी इच्छा को जानकर, अपने जिंदगी के मार्ग को तय करने वाले व्यक्ति थे प्रभु यीशु क्रिस्त। हमें भी इसी प्रकार अपने जिंदगी के रास्ते पर चलते चलते ईश्वर की ओर अभिमुख होना जरूरी है। हम जानते हैं पानी पर चलते हुए भी जब तक पेत्रुस ईश्वर की ओर अभिमुख रहते हैं, तब तक वे चलते रहते हैं। जब ईश्वर की ओर अभिमुख होना छोड़ देता है, आंधी तूफान की ओर अभिमुख होने लगता है, तो वो डूबने लगता है। यह प्रार्थना हमें यह बताती है कि हमें ईश्वर की ओर हमेशा अभिमुख होते रहना चाहिए। यह प्रार्थना हमें दैनिक जीवन के संबंधों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। दैनिक जीवन के संबंध, हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ईश्वर के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये भी यह प्रार्थना हमें सिखाती है। यह प्रार्थना हमें स्वर्ग की याद कराती है। इस दुनिया में रहते हुए भी हमें स्वर्ग की याद कराते हैं। जिस बच्चे को घर से दूर रहते हुए भी माता पिता की याद होती है, वो बच्चा हमेशा माता पिता की इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा। इसी प्रकार जब हम हमेशा स्वर्ग की याद करते रहेंगे, तो हम स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को इस धरती पर बिताएंगे। इसीलिए ये प्रार्थना हमें स्वर्ग की याद कराती रहती है। यह प्रार्थना एक सामुदायिक प्रार्थना है। स्वार्थता के साथ मैं इस प्रार्थना को नहीं बोल पाऊंगा। हमें से कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना को स्वार्थता के साथ, हंगार के साथ नहीं बोल पाएगा। इस प्रार्थना को बोलने के लिए हमें समुदाय के प्रति, अन्य लोगों के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करना पड़ेगा। एक सामुदायिक प्रार्थना है, एक रिश्तों का प्रार्थना है, संबंधों का की प्रार्थना है। साथ ही साथ ये बहुत ही साधारण प्रार्थना है, बहुत साधारण प्रार्थना है। हम संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 9 से 14 में फरीसी और नाकेदार की प्रार्थनाओं को देखते हैं। इसमें फरीसी की प्रार्थना बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उस नाकेदार की प्रार्थना बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु ने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की, बहुत छोटी सी प्रार्थना, बहुत छोटी सी प्रार्थना। पुराने अवस्थान में अगर हम विभिन्न लोगों की प्रार्थनाओं को याद करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि कई प्रार्थनाएं लंबी थी। हम भी बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बहुत छोटी प्रार्थना है, बहुत छोटी प्रार्थना, लेकिन उसमें बहुत लंबे समय तक हमें भोजन देने वाली स्रोत है। तो इसलिए साधारण प्रार्थना होते हुए भी, छोटी प्रार्थना होते हुए भी, यह बहुत ही प्रभावात्मक प्रार्थना है, हमारे ऊपर एक प्रकार से प्रभाव डालता है। इस प्रार्थना में एक आध्यात्मिकता है, इस प्रार्थना में एक प्रकार की आध्यात्मिकता है। इस आध्यात्मिकता को हम समझेंगे तो हम अपने जीवन को सही ढंग से बिता पाएंगे। इस प्रार्थना में ईश्वर के नाम की महिमा होती है। अगर हम माता मरियम के बारे में सोचेंगे तो माता मरियम की महिमा इसमें है कि वह ईश्वर को महिमा प्रदान करती है। माता मरियम कहने लगती है, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर माता मरियम और हेवा के बीच में अगर कोई तुलना होती है, एक बात पर दोनों बराबर हैं। अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ को खोलेंगे, वहाँ पर अध्याय 4 के वाक्य 1 में कहा गया है कि हेवा ने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। प्रभु को महिमा देने वाली बात है। माता मरियम और हेवा के की तुलना करते समय ये बात हमारे सामने आती है, दोनों में एक समानता है, ये है, दोनों प्रभु को महिमा प्रदान करते हैं। मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया है। ये प्रार्थना ईश्वर के राज की स्थापना करने की हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। ईश्वर के राज की स्थापना करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इसके लिए प्रार्थना करना, इसके लिए हर संभव कोशिश करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसके लिए मेहनत करना हमारा कर्तव्य बनता है। यह प्रार्थना हमें ये भी सिखाती है कि हमें ईश्वर की इच्छा को दैनिक जीवन में स्वीकारना चाहिए। दैनिक जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, जीवन को बिताना चाहिए। इस प्रार्थना में हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमारे दैनिक जीवन के लिए भोजन, दैनिक भोजन हमें ईश्वर से ही प्राप्त करना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन के लिए दैनिक भोजन हमें ईश्वर से ही प्रार्थना करना चाहिए, ईश्वर से ही प्राप्त करना चाहिए और किसी से नहीं। शैतान को हमें रोटी देने के लिए, हमें भोजन देने के लिए तैयार रहता है। रोटी लेकर नहीं, लेकिन पत्थर लेकर तुम इसको भोजन में बदल दो और खाओ। शैतान हमें पत्थर को रोटी बनाना सिखाते हैं, यानी छोटे रास्ते से सब कुछ हासिल करना, गलत काम करके सब कुछ जल्दी हासिल करना, ये शैतान सिखाते हैं। हमें शैतान के भोजन के सामने ना कहना चाहिए, ईश्वर के भोजन के सामने रोज हाँ कहना चाहिए, रोज, क्योंकि ये दैनिक भोजन है, दैनिक जीवन के लिए भोजन है। और ये प्रार्थना हमें क्षमा की जरूरत पर भी ध्यान आकर्षित करती है। क्षमा की जरूरत, क्षमा के बिना कोई भी ये प्रार्थना नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो बेकार है। क्षमा के बिना हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मनमुटाव है तो हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है हे पिता हमें हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जो क्षमा नहीं करते वो इस प्रार्थना में झूठ बोलता है। जो क्षमा नहीं कर सकता, जो क्षमा नहीं करता वो इस प्रार्थना को दोहराते हुए झूठ बोलता है, और झूठ बोलकर कोई प्रार्थना करता है तो उससे कोई फायदा नहीं है बल्कि उससे नुकसान है। आखिरी में ये प्रार्थना हमें ये भी सिखाती है कि हमें रोज़ शैतान से संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें रोज शैतान से संघर्ष करते रहना चाहिए और शैतान के चाल चलन से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शैतान ईश्वर की योजनाओं को बिगाड़ना चाहता है। आइए हम ईश्वर से विनती करें कि हम ईश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सिखाई हुई इस प्रार्थना को सही ढंग से, सार्थक ढंग से बोल पाएं।